ईश्वर की कृपा, ये सब मिलकर यदि किसी को आगे बढ़ाए हैं तो उसका व्यक्तिगत तो कुछ नहीं होता, लेकिन इन सब का योगदान बहुत होता है। और मुझे ये संतोष है कि मैं अपने जीवन में कभी पछताया नहीं, कभी निराश हुआ नहीं, और अब होने का प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी जो काम किया या करने की सोचता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं ये समाज का काम कर रहा हूं तो समाज का है, ऋषि दयानंद का है, और ऋषि दयानंद का काम कर रहा हूं तो वेद का है, और वेद का काम कर रहा हूं तो ईश्वर का है। और ये स्वामी की इच्छा है, वो कराना चाहे कराए, न कराना चाहे न कराए, जितना कराना चाहे। तो इसलिए मुझे कोई परेशानी कभी आती नहीं। सेवक का काम है काम करते चलना, स्वामी के निर्देशों का पालन करना, स्वामी की प्रसन्नता के लिए यत्न करना, उसके बाद हानि है लाभ है, अच्छा है बुरा है, कम है अधिक है, ये सेवक की जिम्मेदारी होती नहीं और मैंने कभी मानी नहीं। जो है उसका है, जो हो रहा है वो उसका है, और उसके सब भक्तों का है, उसके अनुयायियों का है, उसके कार्यकर्ताओं का है, विद्वानों का है। फिर भी आपने बहुत आदर के शब्द कहे, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 5 दिन आपने जो भी चर्चा का निर्देश दिया उसके अनुसार जो शब्द मुझे आते थे मैंने आपके सामने रखे हैं, और आज हम चर्चा कर रहे हैं संस्कारों की बात, और विशेष संदर्भ में कि भाई हम अपने नई पीढ़ी को कैसे दें। प्रभु ने मनुष्य को सदा विकल्प बहुत दिए हैं, वो ऐसा भी कर सकता है वैसा भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है कर भी सकता है, और किसी प्राणी को विकल्प नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी संसार में हैं वो अपनी इच्छा से चुनाव नहीं कर सकते, उनके लिए जो करना निश्चित है वही करते हैं वही कर सकते हैं, इसलिए वो बनते नहीं है तो बिगड़ते भी नहीं। किसी कुत्ते को कभी शिकायत नहीं कि उसका बच्चा चोरी करना सीख गया, किसी गधे ने नहीं कहा कि उसका बच्चा पढ़ने नहीं जाता, किसी गाय ने नहीं कहा कि आजकल ये बहुत बिगड़ गया है। जैसे माता पिता हैं होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, उनमें कोई कमी अधिक करते हैं तो आप करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उनका उससे कोई हानि लाभ नहीं होता, उनका नुकसान तो हो भी सकता है आप छेड़छाड़ करें, लेकिन उनको कोई पाप नहीं लगता, उनको कोई पुण्य नहीं होता। यदि उसके स्वभाव में चोरी करना है तो आप उसे चोर कह सकते हैं, लेकिन भगवान ने उसे चोर नहीं बनाया, यह उसका स्वभाव है। वो क्रूर है ये उसका स्वभाव है, वो हिंसक है ये उसका स्वभाव है। एक दिन एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि आचार्य जी ये बताओ कि हम मांस खाएं तो पाप लगता है? मैंने कहा लगता है। बोले भाई शेर को नहीं लगता? मैंने कहा नहीं लगता है। तो बोले उसको क्यों नहीं लगता और हमें क्यों लगता है? हमारे पास विकल्प है और हमने घटिया विकल्प चुना है इसलिए हमको हानि होनी है, उसके पास विकल्प ही नहीं है इसलिए उसके चुनने का प्रश्न ही नहीं है, उसको जिसने जो कुछ कहा है वही कर रहा है, उसे पाप कैसे लग सकता है? तो पाप और पुण्य सदा मनुष्य को लगा करते हैं और किसी भी प्राणी को संसार में पाप और पुण्य नहीं लगते। मनुष्य क्योंकि कर्म योनि है, भोग योनि दोनों है, इसके पास अधिकार है, इसके पास स्वतंत्रता है, इसके पास बुद्धि है, इसके पास विवेक है, तो उसका फल इसको निश्चित रूप से मिलेगा क्योंकि कर्ता ये स्वयं है। पशु पक्षी कीट पतंग स्वयं कर्ता नहीं है, वो तो करने के लिए मजबूर है, बाध्य है, इसलिए उनको पाप नहीं लग सकता, न लगता। अंतर कितना सा है, विकल्प है, इसलिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो हमें मनुष्य को यह तैयार करना पड़ता है कि वो सदा अच्छे विकल्पों का चुनाव करे और कर सके। संस्कार और कुछ भी नहीं है, अच्छे विकल्पों का चुनाव है। आप किसी को कब अच्छा कहते हैं, किसी को कब बुरा कहते हैं, बड़ी सीधी सी कसौटी है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई पढ़ाई में अच्छा होना अच्छा है? अच्छा है तो बस फिर क्या जरूरत है बाकी कुछ करने की? उतने को आप अच्छा कह देते हैं क्या? आप इतना तो कह देते हैं पढ़ाई में तो अच्छा है, फिर अच्छा क्या रह गया? फिर भी लगता है कुछ रह गया। ये बता कैसे लगता है? आप किसी के दरवाजे पर जाएं, घंटी बजाएं, अंदर से कोई बच्चा निकल कर आए और आपसे पूछे क्या है, जब आपके मन में वो बात आती है ना, वो है। आप पूछते हैं आपके पिताजी हैं? नहीं है। और अगला सवाल उसने से पहले दरवाजा बंद करके मुड़ जाए, फिर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बच्चा है। झगड़ा तो यहीं तो खड़ा होता है। और दूसरा बच्चा आता है तो कहता है अंकल जी नमस्ते, किससे मिलना है, आइए बैठिए अंदर चलिए। इतनी सी बात वो करता है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। मुझे कभी कभी मनुष्य बड़ा गरीब लगता है। अपने आप को आप समझते तो बहुत हैं कि बड़े बहादुर हैं। आप एक कल्पना कीजिए कि आप किसी आदमी के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये बहुत दुष्ट है, नालायक है, खराब है, और बस वो आपके सामने से निकलता हुआ मुस्कुरा के आपको नमस्ते कर दे, फिर आप क्या सोचेंगे? वही सोचेंगे जो सोच रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता। आचार्य प्रियव्रत जी गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य और वाइस चांसलर हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने व्याख्यान में एक बात सुना, कहने लगे, किसी की बात चल रही थी और किसी की भी क्या, हमारे यहां समाज में एक व्यक्ति हुए हैं विद्यानंद विदेह, उनकी बात चल रही थी, तो आचार्य प्रेमवत जी ने घटना सुनाई लाहौर की। वो कहने लगे, स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने मुझे आदेश दिया कि ये व्यक्ति सिद्धांतों के विरुद्ध बोल रहा है, इसके विरोध में एक लेख लिखो। आर्य पत्र निकलता था लाहौर से। बोले मैंने लिख दिया, छप गया, कोई बात नहीं। एक दिन सामने से विदेह जी आ रहे थे और मैं सब इधर से जा रहा था, तो मेरे मन में आया कि ये व्यक्ति नाराज तो हो गई, लेकिन वो व्यक्ति मेरे पास में आए तो झुककर उन्होंने मेरे पैर छूने की कोशिश की। मुझे बड़ा संकोच हुआ, मन में आया इतना खराब तो नहीं था जितना कड़ा लिख दिया। इतनी सी बात। कोई किसी आदमी को आप बहुत सारी गालियां दे रहे हो और कोई भला सा आदमी आपको ये कहे कि आप तो कुछ गाली दे रहे हो, लेकिन वो तो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो तो कहते हैं कि आप बड़े सहयोगी आदमी हैं, बड़े उदार आदमी हैं। बोले नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं कह सकता। बोले नहीं, मेरे से कई बार कहा है। कहेंगे अच्छा, फिर तो शायद मैं कुछ मन में सोचता है, गलती सोच रहा था। ये हमारा मन जो है ना, इसे आप बहुत बहादुर समझें, मुझे तो नहीं लगा कभी भी। ये तो तराजू से भी कुछ कमजोर है कि एक दाने से इधर झुकता है या इधर झुकता है। तराजू को भी कुछ वजन चाहिए, ये तो बिना वजन ही झुक जाता। तो इतना जो प्रभावित होने वाला व्यक्ति है उसके लिए आप चिंतन न करें प्रभाव पड़ने का, तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। हमारे ऋषियों ने जब संस्कारों की बात चली तो ये मनुष्यों के साथ रखे हैं, पशुओं के साथ तो रखे नहीं। आप जानते हैं संस्कार, सम कहते हैं, अच्छा, क्री कहते हैं, करना, बढ़िया करना, सुंदर करना, अच्छा करना, अच्छा करने का यत्न करना, उस प्रक्रिया को अपनाना, ये सब संस्कार में सम्मिलित है। संस्कृत में संस्कार शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग है और ऋषि दयानंद ने भी उसको उदाहरण में दिया है। संस्कृत में व्याकरण में एक प्रयोग आता है, संस्कृतम सूपम। सूप वैसे दाल को कहते हैं, लेकिन संस्कृतम सूपम दाल नहीं होती, उसमें छोंक लगी हुई दाल होती है। संस्कृत में संस्कार छोंक लगाने को कहते हैं। अब आप सोच लो कि दाल वैसी खानी है या छोंक लगाकर खानी है। छोंक लगाने से क्या होता है? बस वही होता है जो होता है। स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि लिखी, कभी इसकी भूमिका पढ़ना। उसके भूमिका में अंतिम वाक्य में तो वो ये लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह उचित है कि वो अपने बच्चों का संस्कार करे, जिससे उनका आत्मा पवित्र हो और शरीर दृढ़ हो। संस्कृत के श्लोकों में उन्होंने लिखा है, शिक्षा औषधिर नित्यम सर्वथा सुख वर्धना। कहता संस्कार क्या? संस्कार ही संस्कृतम यत् तन्मेध्यम प्रवर्तते, असंस्कृतम तो अमेध्यम। जो असंस्कृत है वो अपवित्र है, जो संस्कृत है वो पवित्र है। जो पवित्र करने का नाम संस्कार है। है चीज तो है, लेकिन उसको कैसे अच्छा करना है इसका एक प्रयत्न होता है। और उसके लिए दो चीजें लिखाई हैं ऋषि ने, शिक्षा औषधि भर नित्य। शिक्षा से आत्मा का संस्कार होता है और औषधि से शरीर का संस्कार होता है। इसलिए हमारे संस्कार का उद्देश्य एक नहीं है, शरीर आत्म विशुद्धये, शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि के लिए संस्कार होता है। तो आप ये सोचें कि इस शरीर में कचरा भरने के बाद आप संस्कार संस्कृत रह जाएंगे, वो भी नहीं होने वाला। और शरीर को बहुत साफ सुथरा रख के मन को कचरे से भरा रखें तो भी नहीं होने वाला। संस्कार का प्रयत्न तो दोनों ही तरह से करना होता है। इसका एक अच्छा सा प्रकरण मैं आपको बताता हूं, इसकी जरूरत पड़ती कब है पता नहीं, पहले कितनी पड़ती थी लेकिन आज अधिक अधिक पड़ती है। कैसे अधिक पड़ती है? महाराष्ट्र में परली वैजनाथ एक जगह है, वहां एक कॉलेज में मेरा व्याख्यान संयोग से देने गया हुआ था। तो वहां बड़ी समस्या ये थी कि नई पीढ़ी को संस्कार कैसे दें, क्या करें, नई पीढ़ी बिगड़ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरा पहला कहना या मेरी मान्यता यह है कि आप यदि कहते हैं कि नई पीढ़ी बिगड़ गई है तो मैं कहता हूं कि आप गलत कहते हैं। जब कहीं मैं किसी भी समारोह में, किसी सभा में, जहां ऐसी समस्या होती है और समाज में बहुत होती है, यहां भी होती होगी, जब भारत में यहां से जाकर होने लगी है, तो मैं ऐसे माता पिता से एक बात पूछता हूं। मैंने कहा, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, आपका बेटा डॉक्टर बना कि नहीं बना? बोले जी बना, बहुत अच्छा बना। अभी हमारे ये आपने जसवीर सिंह जी बोले यहाँ यूनिवर्सिटी में 2 लाख में 200 चुने गए, 200 में 50 चुने गए, 50 में 5 चुने गए, 5 में यदि आपका बच्चा आया तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा अयोग्य है, आपका बच्चा कहना नहीं मानता? कैसे कह सकते? आपका बच्चा अच्छा इंजीनियर बन रहा है, अच्छा डॉक्टर बन रहा है, अच्छा प्रशासक बन रहा है, जो कुछ आप उसे बनाना चाह रहे हैं वो बन रहा है और उसने बनकर दिखाया है। मैंने कहा यदि उसके बाद भी आप गाली देते हैं तो आपसे मूर्ख दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आपने उसे इंजीनियर बनने को कहा, वो इंजीनियर बना। आपने डॉक्टर बनने को कहा, वो डॉक्टर बना। आपने वकील बनने को कहा, वकील बना। व्यापारी बनने को कहा, व्यापारी बना। प्रशासक बनने को कहा, प्रशासक बना। और जो नहीं बन पाया वो कुछ भी नहीं बना, उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, आप तो कोसते उसे है ना जो बना। तो मैंने कहा फिर आपको कष्ट क्या है? मैंने कहा इनमें से कुछ नहीं बना हो तो बताओ। नहीं, बोले बना तो है, हमने डॉक्टर बनाना चाहा, बना। मैंने कहा फिर गलती कहां हो रही है? क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है उसका? हाँ जी, सम्मान नहीं करता, सहयोग नहीं करता, सेवा नहीं करता। मैंने कहा कि जितना आपने पढ़ाया है उसमें कहीं इसका कोई पीरियड लगाया था? लगाया था तो बता दो। कभी उसको सिखाया था कि दूसरे को कुछ दिया कर, उसके हाथ से कभी दिलाया था, किसी को आदर करना बताया था? यहां तो आप क्या सिखाते मुझे नहीं पता, यहां तो सिखाते भी होंगे, हमारे यहां तो उल्टा ही धंधा है। बच्चा पढ़ रहा है, चाचा जी बाहर से आए हैं, मां कहती है बेटा पढ़, उसको तो चाय में पिला दूंगी, उसका आमना सामना नहीं होता। चाय पिलाई, बात की, भेज दिया, बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। वो बच्चा बाजार में चाचा को मिलता है, नमस्ते नहीं करता। चाचा कहता बच्चा बदमाश है। बच्चा को क्या पता कि बदमाश कैसा होता है? उसको कहा होता, उससे करवाया होता, उसको परिचय दिया होता, उसको वो वहां क्रियान्वित कर सकता था। लेकिन आपने उसे यह अवसर कब दिया? आपने ये कहा जाने दो उसको, अपना काम कर, तो वो सदा ही ये करता है, जाने दे। मतलब आप उस बात के लिए दुखी हैं और जिम्मेदार उसको बता रहे हैं जिस बात को आपने उसे कभी सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं है, अपने जीवन से कभी उदाहरण देकर दिखाया ही नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारी नई पीढ़ी के साथ ये पुरानी पीढ़ी जो है ना घोर अन्याय करती है। आपने जो सिखाया वो बना, गड़बड़ कहां होती है? पिछले 2-4 साल पहले डॉक्टर था, बड़ा भला कह रहा हूं, उसने जाए भला का काम यही किया था कि कोई 400 लोगों की किडनी काट के 400 जिनको जरूरत थी उनको दे दी, तो बताओ इसने क्या बुरा किया? भाई आपके पास 2 किडनी है, उसने 1 निकाल ली, क्या घटा वो आपका? उसने चाकू तो गलत नहीं लगाया, बढ़िया लगाया, जैसा सिखाया था बिल्कुल वैसा लगाया, और जिसको जरूरत थी बेचारा मर रहा था उसको लगा दिया, तो उसने तो कोई भला ही किया। फिर आपकी गाली का शिकार क्यों है वो? आप बोलते हैं बड़ा बदमाश आदमी है, बड़ा दुष्ट है कि उसने 400 लोगों की किडनी निकाल दी। अरे भाई 400 लोगों को लगा भी तो दी, क्या बुराई हुई? और यदि इसमें बुराई है उसका जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि ये बुराई होती है ये आपने उसे कभी सिखाया नहीं, आपकी शिक्षा का यह हिस्सा ही नहीं है। और इसके कारण से आज इतनी परेशानी हमारे देश में तो बहुत हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, यहां तो आप शायद उतनी अनुभव ना करते हो। अभी मैं फरीदाबाद के 15 सेक्टर में आर्य समाज के कार्यक्रम में गया हुआ था, 2 महीने पुरानी बात है, वहां एक घटना बड़ी चर्चित थी, वो समाचार पत्रों में भी आई थी। घटना क्या थी कि फरीदाबाद के 3 सेक्टर में, घर का नंबर तो मैं भूल गया, कोई वकालत का काम तो है नहीं जो प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करूं, कोई महिला रहती थी, उसके पति थे नहीं, विधवा थी, बेटा यहां अमेरिका में था, और किसी से कोई घटना मेल खाती हो तो मुझे दोष नहीं देना क्योंकि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से कह नहीं रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि अपन सब एक जैसे होते हैं, कभी कभी लग जाती है किसी को, इसलिए उसकी उसको थोड़ा सा याद मत करना। वो यहां था तो यहां से एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया, बोले मां मुझे अमेरिका में घर खरीदना है। बोले बेटा खरीद ले। बोले थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं ये सोचता हूं कि फरीदाबाद का घर बेच दूं। मां ने कहा बेटा बेचने के 2 तरीके हैं, या तो तू मुझे अमेरिका ले चल, घर बेच दे, या फिर मेरे मरने की प्रतीक्षा कर ले, इंतजार कर ले, मैं मर जाऊं तो बेच ले। संयोग से उस लड़की की पत्नी वृद्धा की बहू फोन पर साथ खड़ी थी, तो उसके मुंह से निकला ये बुढ़िया 10 साल नहीं मरेगी तो क्या मैं बेघर रहूंगी। अब इसमें न तो बहू की गलती है न बेटे की गलती है, क्योंकि ऐसी कोई बात सिखाई गई हो तो गलती है, उसने यदि सीखा नहीं है तो गलती हो कैसे सकती है। और इतने पर ही बात रुकी नहीं, लड़के ने ऑनलाइन घर बेच दिया और एक दिन अंत में तो अंगूठा लगाना ही पड़ता है ना, उसके लिए फरीदाबाद गया और मां से बोला मां चल अमेरिका चलते, ज्यादा सामान लेना नहीं, 2 अटैची रख ले, चलते इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उड़ान पकड़ने के लिए आ गए। मां को बेंच पर बैठाया, दोनों अटैची साथ रखी, बोला मां टिकट लेके आता हूं। 3 घंटे आया नहीं। अच्छा किसी मां के मन में क्या आएगा कि यही आएगा, बेटे के साथ पता नहीं क्या दुर्घटना घटी है, उसने एक आदमी को पकड़ा, भैया मेरा बेटा टिकट लेने गया था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, आप पता करो, देखो कहीं उसको कोई मुसीबत तो नहीं आई। उसने छानबीन की, नाम पता देखा, सूची देखी आने वाले जाने वाले टिकट लेने वालों की, पता लगा कि वो तो 1 घंटा पहले उड़ गया यहां से। कल्पना करके देखो जरा इस बात की, आदमी मार के चला जाए तो एक बार यूं समझ में आता है चलो बात खत्म हुई, बुरा तो हुआ पर पीछे कुछ बचा तो नहीं। लेकिन उस मां को उसने हवाई अड्डे पर बैठा कर घर से निकाल कर, कितना कड़ा दिल होगा उसका और कितनी समझदारी होगी दिमाग में कि उसको वहां बैठा करके हवाई जहाज से चला गया। क्या करोगे? लेकिन संस्कार किसे कहते हैं इसका उल्टा देख लो। जब उस आदमी के सामने ये विकट समस्या आई कि महिला का बेटा चला गया और अकेली महिला हवाई अड्डे पर बैठी है, क्या करे? उसने ये किया कि उस महिला से संपर्क करके जो मकान बेचा था और जिसको बेचा था उससे संपर्क किया और उससे कहा देख भैया एक समस्या है मेरी, यदि तू इसमें मेरी सहायता कर सकता हो तो सुन ले और कर सकता हो तो कर दे, कि इसका बेटा इसे छोड़कर चला गया, घर इसका बिक गया, ये बाहर खड़ी है, यदि तुझे उचित लगे तो इसे घर में रख ले, एक नौकरानी की जरूरत तुझे भी होती है, बच्चों की देखभाल कर देगी, इसका जीवन कट जाएगा। वो आदमी शायद बेटे से तो कुछ ठीक ही रहा होगा, आया और उसने कहा कि जब मुझे इसे घर में रखना ही है तो मैं इसे नौकरानी बना के क्यों रखूंगा, मैं इसे मां बनाकर ही रख लूंगा। और वो ले गया और आज है, बेटा भी यहां है और मां भी वहां है, झगड़ा कहां है? आपने बेटे को पढ़ा के लिखा के अमेरिका भेज दिया। देखो अमेरिका में आने का बुरा मत मानना, हमारे यहां भी ब्यावर एक कस्बा है, वहां माहेश्वरी समाज की एक सभा हुई, सभा हुई तो एक आदमी बड़ा दुखी था। वो कहने लगा, देखो भले लोगो, आज से कसम खाओ कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं। बड़ा विचित्र लगेगा, बोले क्यों? बोले पढ़ाओगे तो क्या होगा और क्या हो रहा है वो देखो। तो उसने एक घटना सुनाई अपने साथ बीती हुई। पिता को, पिता वहां रहता था, बच्चे यहां रहते थे। पिता को रास्ते में चोट लग गई जाते हुए, साथी ने जो घूमने साथ जा रहा था उसने उनको चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। कहा कि बेटे को फोन कर दो। पिता ने कहा दुख पाएगा, क्या करना है, ठीक हो जाऊंगा। मां बाप की सोच तो मां बाप की होती है। अब बेटा कितना भी अपराध ही कर दे तो उनके मन में उसके प्रति मोह रहता है। लेकिन साथी ने डायरी पलटी और उसका फोन नंबर लेके उसे फोन किया। बेटा समझदार था, उसने उधर से फोन आया तो अपनी पत्नी को दे दिया, क्योंकि वही अच्छा इलाज कर सकती है। सास बहू को झगड़े में, सास ससुर किसी का इलाज करना हो तो फिर बहू को आगे करना पड़ता है। हालांकि बदनाम है इसलिए कोई बात नहीं, चल जाता है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में मैंने दाखिल करा दिया है, तुमको सूचना दे रहा हूं कि तुम जो उचित समझो। तो उनकी पुत्रवधु कहती है, अंकल हमको तो छुट्टी मिलेगी नहीं, आप व्यवस्था कर लेना, कोई नौकर रख लेना, जो भी पैसा लगेगा मैं भेज दूंगी। ठीक है, कोई बात। चार दिन बाद वो आदमी मर गया। अब तो फोन करना ही था, दोबारा फोन किया, भैया तुम्हारे पिताजी मर गए। बेटा कहता जब मर ही गए तो आकर क्या करूंगा, आप ऐसा करना अंत्येष्टि कर देना, गंगा जी किसी को भेजना हो तो भेज देना, जो पैसा खर्च हो बता देना, मैं भेज दूंगा। कितने अच्छे संस्कार हैं। और ये संस्कार यदि आते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? बुरा इसलिए नहीं लगना चाहिए, जो दिया है वो आया है, ये उसके अपने नहीं है, ये आपके मेहनत का फल है। अरे आपने उसे इतना योग्य बनाया तो आपकी मेहनत है ना, तो जब वो योग्य बना है वो आपकी मेहनत है, तो जो अयोग्य रह गया वो किसकी मेहनत है? वो किसी और की है, वो उसकी है और ये आपकी है, ऐसा नहीं होता, गलत है। मोटी सी बात समझने की ये है, यदि आप चाहते हैं कि वो गलत है तो सही आपको बताना पड़ेगा, सही आपको सिखाना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप सिखाओ भी नहीं और आ भी जाए, ये नहीं होने वाला। जब कोई व्यक्ति कहता है ना, खासतौर से हमारी उम्र के लोग जब ये कहते हैं, जी हम तो बहुत अच्छे थे, हम तो माता पिता की सेवा भी करते थे, कहना भी मानते थे, ये भी करते थे, वो भी करते थे, हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं जी, सुनते ही नहीं है। मैंने कहा, जी आप बहुत गलत बात बोल रहे हो। आप यदि किसी तरह से अच्छे थे या हैं, ये योगदान आपका बिल्कुल नहीं है, ये योगदान आपके माता पिता का है। और आपके बच्चे अच्छे नहीं है, ये योगदान 100% आपका है, दूसरे का श्रेय आप क्यों लेते हो? हम तो अच्छे हैं और हमारे बच्चे खराब हैं, गलत है। हम अच्छे हैं, हमारे माता पिता अच्छे थे, हमारे बच्चे गलत हैं तो हम गलत हैं, ये क्यों भूल जाते हो? जिस चीज को आपने बनाया नहीं उसकी आप आशा करते हो, जो चीज बोई नहीं आप उसे काटना चाहते हो। नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा, हजार जन्म में भी नहीं होगा, फिर क्या करना? करना तो करने का ही तरीका है, और कोई तरीका होता नहीं। आज करो, कल करो, ऐसे करो या वैसे करो, करने से होगा। कैसे होगा इसका भी एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या देता हूं, एक शास्त्र की बात कहता हूं। बहुत दिन पहले, अब तो वो सज्जनी गुजर गए, ब्रह्म प्रकाश गोयल उनका नाम था और वो लुधियाना सराभा नगर के रहने वाले थे। उनके मित्र एक विरमानी जी, संजय विरमानी नाम के हैं, व्यापारी हैं वो भी। संजय विरमानी का एक दिन फोन आया मेरे पास, पंडित जी एक आपका परोपकारी का पाठक है जो पिछले 10 साल से परोपकारी पढ़ता है, आज वो अपने 75वां जन्मदिन मना रहा है और उसकी इच्छा है कि आप उसके जन्मदिन के अवसर पर लुधियाना आओ। अब वैसे कौन किसको पूछता है, तो कम से कम इतना प्रेम करने वाला, याद करने वाला, तो मैं सारे काम छोड़कर जाना ही अच्छा लगा, इतने प्रेम से कौन मिलेगा। मैं गया तो उस भले आदमी ने एक बड़े से मंदिर में कार्यक्रम रखा और मित्र संबंधी दोस्त तो सभी तरह के होते हैं, सारे कोई आर्य समाजी तो होते नहीं है, व्यापारी थे तो वकील थे, सब कुछ उनके साथ वैसे ही लोग थे। मंदिर में कार्यक्रम रखा, बहुत सुंदर अच्छा बड़ा भव्य मंदिर था और मेरे से कहने लगे, देखो पंडित जी व्याख्यान शास्त्रीय नहीं देना, शास्त्र की बात नहीं करना, फिर व्याख्यान ऐसा देना कि मेरे चपरासी की समझ में आ जाए, जो आरिस्तिया मंदिर का सेवक है उसकी समझ में आ जाए, बैठ जाओ गद्दी पर और व्याख्यान दो। बड़ा कमाल है, इतनी शर्तों के साथ तो मुझसे किसी ने व्याख्यान नहीं दिलाया। मैं सोच रहा था, इतने में क्या हुआ कि एक लड़की उस मंदिर के द्वार पर आ गई, उसके हाथ में पूजा की थाली थी, उसको कपड़े से उसने ढक रखा था, पल्लू से उसने सिर ढका, दरवाजे पर खड़ी हुई और उसने प्रणाम किया, आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया और मुझे मेरे व्याख्यान का विषय मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे केवल यह देखना था कि यह करती क्या है। वो गई, उसने जो देवता पहले मिला उसको प्रणाम किया, दूसरा मिला उसको किया, जिसके पास जाना था उसके पास गई, थाली नीचे रखी, प्रणाम किया, बैठी, उसको साफ सुथरा किया, कपड़े से पोंछा, पानी से धोया, माला पहनाई, तिलक लगाया, फिर नैवेद्य खिलाया, हाथ जोड़े, उसके पैर छुए, पैर दबाए, कुछ मन में कहा और हाथ जोड़कर धीरे से खड़ी हुई और कदम पीछे लिया और दूसरी तरफ चली। मैंने कहा, हो इतनी सी गलती है जिसके लिए इतना बड़ा दंड हो रहा है और इसको केवल हमारे ऋषियों ने समझा था। क्या आप जिसकी सेवा कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो, आपने जिसके पैर दबाए बहुत अच्छा किया, आपने उसको खिलाया बहुत ही अच्छा किया, उसको माला पहनाई ठीक किया, तिलक लगाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मैंने पूछा मन से कि भैया इसने कम से कम पिछले 10-5 सालों में ये काम किया ही होगा और हम बूढ़े हैं तो 150 साल से करते आ रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, रोटी खाना भी खिला रहे हैं, माला भी पहना रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्या इस भगवान का हाथ कभी उठ करके भक्त की पीठ पर गया है? 50 साल हो गए पैर छूते, कभी मुंह से कोई आशीर्वाद का शब्द निकला है? मैंने कहा चाहिए करके देखो कि घर में यही काम करके देखो, आपने यहां नलाया है किसी को घर में नला के देखो, यहां किसी के पैर दबाए हैं घर में पैर दबा के देखो, यहां किसी को अपने हाथ से खिलाया है घर में किसी को हाथ से खिलाकर देखो, यहां माला पहनाई है घर में माला पहना के देखो, और क्या 50 साल तक करने के बाद उसका व्यक्ति का हाथ आपके आशीर्वाद के लिए नहीं उठा होगा? आप कल्पना कर सकते हो, आपने पैर छुए होंगे तो मुंह से कोई शब्द नहीं निकला होगा, आप सोच सकते हो, शायद एक बार में भी ऐसा नहीं होगा। आपने अपने दुश्मन के लिए यदि पैर छूने का यत्न किया तो आशीर्वाद के शब्द जरूर निकले होंगे। एक तरफ भगवान है जिसको आप 50 साल से पैर छू रहे हो और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो, उसका कभी हाथ उठा नहीं और उसके मुंह से कभी शब्द निकले नहीं, लेकिन आपकी भावना में अंतर आया नहीं, क्यों? कि आपने उसे देव समझा है। गड़बड़ कहां हो रही है? ऋषि क्या कहता है? कहता है भले आदमी कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, जहां देवता है उसे तो मंदिर नहीं कहता, और जहां देवता नहीं है उस पर तूने मंदिर लिख रखा है। यदि किसी दिन जो भाव तू मंदिर में लेकर गया है वो भाव कहीं यहां लेकर बैठता तो ये जो चेतन लोग बैठे हैं क्या ये वो नहीं है जो मंदिर में हैं? याद करना, हमारे यहां के सारे संस्कारों की जड़ कहां है वो बता देता हूं आपको। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा मतलब ऐसा है उपनिषद जिसमें समाज के बारे में, ईश्वर के बारे में और शिक्षा के बारे में अच्छा अच्छा लिखा गया है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ के देखना। उसमें एक छोटा सा प्रकरण है 15-20 लाइनों का। आपको ये सारे संस्कारों का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा यदि आप उसे पढ़ लें। उस सारे की चर्चा तो मैं नहीं कर रहा, कुछ चार शब्दों की चर्चा कर रहा हूं। जिस दिन आचार्य अपने बच्चे को अपने आश्रम से विदा कर रहा है उस दिन क्या कह रहा है मैं इतना बता रहा हूं। मतलब वेद पढ़ने से इंजीनियर बनेगा कोई मतलब नहीं है, वो बने तो नहीं बने तो उसका वेद से कुछ लेना देना नहीं। डॉक्टर बनेगा, चिकित्सक बनेगा, कुछ बनेगा नहीं। लेकिन इंजीनियर बन के भी मनुष्य नहीं बना तो भी कुछ नहीं है। तो शिक्षा से होना क्या है? शिक्षा से एक तो योग्यता है जो आजीविका देती है। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये आपकी आजीविका देने वाले साधन है, ये मनुष्यता के बाद साधन नहीं है। डॉक्टर किडनी बेच रहा है, ये उसके शिक्षा का लाभ है, लेकिन किडनी किसकी बेचनी चाहिए और किसकी नहीं बेचनी चाहिए और किसको बेचनी चाहिए और किसको नहीं बेचनी चाहिए, ये इस शिक्षा से नहीं आता, ये संस्कारों से आता है। उसको इस तरह से आपने दिया नहीं है कभी। लेकिन आचार्य उस दिन क्या कहता है मालूम है? समय वक्त हो रहा है, मैं बात समाप्त करता हूं। वो ये कहता है वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद पढ़ाने के बाद आचार्य अपने शिष्य को कुछ चलते हुए निर्देश कर रहा है, और निर्देश क्या कर रहा है उसकी अंतिम पंक्ति में चार शब्द हैं, इसलिए इसका महत्व आपकी समझ में आ जाए। वो कहता है एष आदेश, ये जो मैंने ऊपर कहा है ये क्या है? आदेश। एष उपदेश, ये जो मैंने कहा है वो क्या है? उपदेश है। एषा वेदोपनिषद, ये क्या है? ये वेद का रहस्य है। एतद अनुशासनम, ये इस संसार में चलने का एक अनुशासन है। तो वो क्या नियम है उसकी लंबी चर्चा करने का न तो समय है न कोई बात है, लेकिन मोटी सी बात क्या कही उसने, चलते हुए बच्चे को गुरुकुल से निकलते हुए बच्चे को उसने कहा घर जाना। आया था तब तो मां की गोदी से आया था, जा रहा है तब तू किसके पास जा रहा है इसका ध्यान कर लेना। क्या करना? कहता है कि मां है मां नहीं है, वो मां नहीं है, फिर क्या है? कहता है मातृदेव भव। तो मां को केवल मां समझ के बात मत करना। क्या करना? मां को देव समझना, और देव तो मंदिर में होते हैं, घर में तो होते नहीं। इसलिए जो बात हम मंदिर में करते हैं वो घर में नहीं करते, जो घर में करते हैं वो मंदिर में नहीं करते, क्योंकि देव का भाव आते ही पूजा की बात आती है, आदर की बात आती है, सेवा की बात आती है, और वो देव क्योंकि मंदिर में है तो पूजा सेवा आदर प्रसाद सब वहां है, उसके हिस्से चला जाता है, यहां क्यों आएगा? लेकिन यहां तो ये कहा है मातृदेवो भव, यहां से आया था तब खाली मां थी, अब जब तू जाए ना तो खाली मां नहीं है, वहां मां के रूप में देवता बैठा वो मिलेगा। पितृदेवो भव, पिता के रूप में देवता बैठा हुआ मिलेगा। आचार्य देवो भव, आचार्य के रूप में देवता मिलेगा। अतिथि देवो भव, अब एक बात सोचकर देखो भाषा का कमाल क्या होता है। आप यदि बच्चे का नाम रावण रखेंगे तो आपके मत संस्कार में रावण ही तो आएगा, और राम रखेंगे तो राम आएगा, ऐसा तो है नहीं कि भाषा का कोई मतलब नहीं निकलता। तो जब आप किसी को देव मान लोगे, देव देख के रूप में देख लोगे, देव जान लोगे, तो फिर आपका व्यवहार होगा कैसा बताना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं, पंजाब में गुरदासपुर में बड़े अच्छे वकील थे, उनका नाम याद आया तो बताता हूं, प्रसिद्ध वकील थे अपने समय के, वकालत करते थे। उनका बेटा जो था वो उसको भी वकील बनाया, वो 10-20 किलोमीटर दूर दूसरा जो कस्बा है उसमें, गुरदासपुर के बगल में वो उसमें वकालत करता था। और वकील साहब को, बड़े वकील साहब को भी फुर्सत होती थी तो बेटे से मिलने उसके कोर्ट में, उसके न्यायालय में चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो न्यायालय में गए, बातचीत की, वहां के वकील जो नए थे वो सब छुट्टी ले लेते थे, बड़े वकील साहब आए हैं उनसे बात सुनेंगे, उनकी उनसे नई सी बात सीखेंगे, कुछ अनुभव बताएंगे, तो सारे लोग उनको घेर लेते थे। बातचीत की और सारे वकील मिलकर उनको छोड़ने के लिए बस पर आ गए। उनका बेटा उठा और बेटे ने बस के अंदर सभी लोगों के बीच में अपना सिर पिता के पैरों में रखा और प्रणाम करके नीचे उतरने लगा। तो दूसरे साथियों ने बस ड्राइवर को कहा कि अभी गाड़ी नहीं चलाएगा, 2-4 मिनट रुको। उन्होंने वकील साहब को कहा कि हमको तो हाथ उठाते भी शर्म आती है, और आपका बेटा भरे न्यायालय में, भरी बस में, चलती सड़क पर आपके सिर में पैर रख के प्रणाम करता है और इसे संकोच नहीं होता, इसे आपने कैसे सिखाया? उन्होंने कहा मैं तो पता नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया, इसी से पूछो। तो उन्होंने साथियों ने पूछा भाई कैसे सीखा तूने? बोले मैंने कैसे भी नहीं सीखा, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। बोले घर में दादा दादी मेरे बराबर कमरे में रहते थे, इधर मेरे माता पिता रहते थे, मैं उनके साथ रहता था। नियम था कि मेरे माता पिता उठते थे सीधे दादा दादी के कमरे में जाते थे, जैसे मैं प्रणाम करता हूं उनको मैंने ऐसे ही प्रणाम करते देखा है, वो करते थे हम भी करते थे, हमको किसी ने नहीं सिखाया। आप सोचते हो संस्कार कैसे डालें जी, कौन सी नई शैली निकालें जी, कौन सी विवाह बनाएं जी, पता नहीं कौन सी बनेगी, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो कोई विधा ही मालूम नहीं। मुझे तो इतनी विधा मालूम है कि बच्चा जो देखता है वो करता है, बड़ा भी जो देखता है वही करता है। आप यहां आकर बहुत शिष्ट बन जाते हैं, सभ्य बन जाते हैं, वहां जाते ही तो ऐसे सभ्य नहीं रहते हैं, भले ही आप रहते हो, यहां आपको कागज फेंकते डर लगता है और वहां पूरी कॉपी फाड़ कर सड़क पर फेंकने में अच्छा लगता है। तो ये जो बात है, हम जो चाहते हैं कि ये संस्कार मिले, पहले तो आपको यह तय होना चाहिए कि इसकी जरूरत है। जब आपको विज्ञान की जरूरत है, भौतिक शास्त्र की जरूरत है, रसायन शास्त्र की जरूरत है, वकालत की जरूरत है, व्यापार की जरूरत है, आप उसके लिए यत्न करते हो और आपको वो मिलता है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि संस्कार की आपको जरूरत है और वो आपको नहीं मिल सकता, ये कैसे मान लूं मैं? गलत है। लेकिन मुश्किल क्या है, इसकी जरूरत जिस दिन अनुभव होती है उस दिन हम बहुत दूर निकल चुके होते हैं, उसके ध्यान हमको बुढ़ापे में आता है, बहू ने मेरा बेटा छीन लिया, हाय बहू ने मेरा बेटा छीन, बेटा तो बहुत अच्छा था, गोदी से बाहर ही नहीं जाता था, लेकिन जिस दिन से बहू आई है ये गोदी भूल गया, उसी के पल्लू के साथ रहता है। भाई ये हुआ क्यों? आप यदि समय पर उस बात में सचेत रहें, अपने घर में उस परंपरा को डालें, अपने व्यवहार से बिना प्रत्यक्ष के, छोटे बच्चे के साथ तो आप प्रत्यक्ष कर सकते हो, लेकिन बड़े के साथ तो प्रत्यक्ष नहीं चलता, बातचीत चलती है, संवाद चलता है। उस दिन आप करोगे तो जिसने डॉक्टरी सीखी, जिसने वकालत सीखी, जिसने इंजीनियरिंग सीखी, जिसने बिजनेस सीखा, वो आपके संस्कार नहीं सीखेगा, ये मेरी समझ से परे की बात है। मुझे कभी पता नहीं इतने दुखी आप क्यों हैं कि जैसे दुनिया से कोई चीज उठ गई अब मिलेगी नहीं। ये सारी चीजें तो बाहर से बटोरनी थी, संस्कार तो आपको अपने अंदर से निकालने हैं। जो अंदर से निकालने हैं, अपने विचार से निकालने हैं, अपने व्यवहार से निकालने, उसके लिए आप चिंता करते हो, और जिनको बाहर से लाना था खींच करके उनको लाने में आपको पूरी सफलता मिली है। तो केवल सोच का झगड़ा है, और उसके लिए क्या होता है, जब हर चीजों के लिए समय दिया है ना, तो उसके लिए भी समय देना पड़ता है। आपके पास समय है नहीं, और जिस मूल्य से जो चीज मिलती हो वो मूल्य आपके पास नहीं है, तो इस अमेरिका में तो बिना मूल्य कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको संस्कार क्यों मिलने चाहिए? कोई क्यों दे देगा? मित्रों, कीमत तो चुकानी पड़ती है, और कीमत चुकाओगे तो माल नहीं मिलेगा, ऐसा दुनिया में बाहर नहीं होता, तो भीतर कैसे हो जाएगा? निश्चित मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब आप कहोगे बाहर का प्रभाव है, कौन मना करता है? बाहर की भाग दौड़ है, प्रभाव है, इसके बीच में भी तो हो सकता है, इसके बीच में भी। जहां ऐसे लोग मिले कि जो घर बेच के आ गए, पिछले दिनों एक अखबार ने एक पुस्तक जो है वो पूरे अपने पाठकों में बांटी थी, और उसमें एक उदाहरण था कि एक लड़का जो है स्विस स्विट्जरलैंड में काम करता था, रामा कुछ नाम था, मद्रासी लड़का था। उसने माता पिता को कहा कि आप यहां आ जाओ, बूढ़े हो गए हो, आपसे वहां रहा नहीं जाएगा। वो बोले भाई अब तेरे पास हम नहीं आ सकते, ना हमसे वहां रहा जाएगा ना हमारे लिए, वो वहां जनता है, हम तो अपनी जगह ठीक है, तो अपनी जगह ठीक है। बेटा बोला ऐसा तो नहीं होगा, या तो आप यहां आ जाओ नहीं तो मैं आऊंगा। मां बाप तो बोले हमसे तो होगा नहीं। बहू बेटा दोनों नौकरी छोड़ी, वहीं बेंगलोर में मकान लिया, बेंगलोर में नौकरी की, माता पिता के साथ रहने लगे। अच्छा वो क्यों रहने लगे और इसने क्यों घर बेच दिया? किसी का नाम तो संस्कार है। जो व्यक्ति आज जिसे असंस्कृत कह रहे हो उसमें भी संस्कार की क्षमता है, लेकिन उसको किसी ने संस्कार दिया नहीं। इसलिए चिंता इस बात की मत करो, देने का प्रयत्न आज से करने लगो, जो उससे चाहते हो वो आप करने लगो। और इस पूरे देश में, मैं ऑल इंडिया था, वहां भी और यहां भी, और कोई रगड़ा नहीं है, एक ही छोटा सी बात है, मां बाप के पास साधन हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन दुखी हैं। क्यों? बेटे का एक फोन नहीं आया, महीने में भी कर लेता तो अच्छा था। क्यों कर लेता? क्यों कर लेता? सिखाया हो तो करता, आपने किया होता तो करता, आप किसी को करते होते तो करता, आप तो करें नहीं, और आपका बेटा आपको करे, क्यों करे? वो अपने बेटे के बारे में सोचेगा, आपके बारे में थोड़ी सोचेगा। तो इसलिए संस्कारों का जो प्रश्न है, जिसकी बात हम कर रहे हैं और समय भी हो गया, तो मैं तो यह अनुभव करता हूं यदि इसकी आवश्यकता है, तो जब दुनिया की इतनी आवश्यक चीजें आप कमा सकते हो तो इसको आप नहीं कमा सकते, ये मैं स्वीकार नहीं करता। हां, समय आपको देना पड़ेगा जैसे उसके लिए दिया है, परिश्रम आपको करना पड़ेगा जैसे उस काम के लिए किया है। बस सोच का झगड़ा है, आपके अंदर सोच आना चाहिए कि ये चीज ठीक है और ये की जानी चाहिए। उस दिन आपके बच्चों में संस्कार अपने आप आ जाएगा, देना नहीं पड़ेगा। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। अच्छी या बुरी, सही या गलत, इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है मेरी। जो मुझे आता जैसा आता है वैसा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको अच्छा लगा तो आपकी कृपा है, मेहरबानी है, नहीं अच्छा लगा तो मेरी लौटा देना, और तो मैं क्या कर सकता हूं। आपका बहुत 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 धन्यवाद।